आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से अलग कई आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अपने हम मनसब तारिक रहमान को भारत आने की दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो बांग्लादेश के साथ करीबी तालमेल से काम करने के मुंतजिर हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में हिस्सा लेंगी। आसाम में सियासी जमातों ने इंतखाबी कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात का इनेकाद एक या ज्यादा से ज्यादा दो मरहलों में कराए। और क्रिकेट में मर्दों के T20 आलमी कप में ग्रुप ए के मैच में आज शाम अहमदाबाद में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के तनाजुर में कई आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। जनाब मोदी का स्पेन के सदर पेद्रो सांचेज, फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म एंटी पेटरू ओरपो, सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वूसिक, क्रोएशिया के वज़ीर-ए-आज़म एंड्रे प्लेनकोविच, स्टोनिया के सदर अलार कैरिस, भूटान के वज़ीर-ए-आज़म दासो शेरिंग टोबगे और कजाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ओल्हाज बेक्तिनोव से मुलाकात का प्रोग्राम है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में भारत मंडपम में जारी है। ये पांच रोजा समिट ऐसी पहली आलमी एआई समिट है जिसका इनेकाद आलमी खित्ते जुनूब में हो रहा है। 20 मुल्कों के आलमी रहनुमा इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
एआई इंपैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन आज एक तहकीकी सम्पोजियम मुनाकिद किया जाएगा जिसमें इस्टोनिया के सदर अलार कारिस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी के वजीर मम्लिकत जीतन प्रसाद और दिगर शख्सियतें तबादले ख्याल करेंगी। इसके अलावा आज इफ्तिताही जलसा और वर्किंग ग्रुप का आगाज भी होगा। जलसे में इंडिया एआई समिट के वसी तसव्वुर, तरजीहात और एजेंडे पर तबादले ख्याल किया जाएगा। किस तरह एआई आलमी तरक्की की तश्कील नौ SDG से आगे तक करेंगी, इस सिलसिले में भी एक जलसा मुनक्किद किया जाएगा जिसमें इस बात के इम्कान तलाश किए जाएंगे कि किस तरह एआई पैदावारियत में इजाफा कर सकती है, सलाहियत को मुस्तहकम बना सकती है, तरक्की के रास्ते खोल सकती है और दुनिया भर में नाबराबरी को बराबरी में बदल सकती है। एआई की दिफाई अहमियत का एतराफ करते हुए भारत ने एक बड़े और सबकी शमूलियत वाले इको निज़ाम की तामीर को आला तरजीह दी है। इंडिया एआई मिशन एआई कंप्यूट बुनियादी ढांचे की तरक्की, मुल्क ही में तैयार किए गए एआई मॉडल्स का फरोग और बड़े पैमाने पर सलाहियत साजी के प्रोग्राम जैसे इकदाम से मुल्क में जिम्मेदाराना और काबिल एतबार एआई की एक मजबूत बुनियाद पड़ रही है। ऋषभ जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
भारत और फ्रांस ने अपने ताल्लुकात को आलमी खसूसी शराकत दारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में 21 नुकात सामने आए हैं। दोनों मुल्कों ने तौसी शुदा शराकत दारी और होराइजन 2047 खाके पर अमल दरामद के लगातार जायजे के लिए गैर मुल्की वुजरा के सालाना मुजाकिरात शुरू करने से भी इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने इख्तरा का भारत फ्रांस साल और भारत फ्रांस इख्तरा नेटवर्क शुरू करने से भी इत्तेफाक किया है। मुंबई के लोक भवन में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक मुश्तरका बयान में जोर देकर कहा कि यह शराकत दारी महज दिफाई नौइयत की नहीं है बल्कि आज की गैर मुस्तहकम आलमी सूरत हाल के दौरान आलमी इस्तेकाम और खुशहाली के लिए भी है।
वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में अभूतपूर्व गति लाएगा।
जनाब मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात खुसूसी नौइयत के हैं और फ्रांस भारत के कदीम तरीन दिफाई शराकतदार मुल्कों में शामिल है।
भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है, आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है।
फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीराजम नरेंद्र मोदी को 52वीं G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत 2026 में फ्रांस करेगा। मुंबई में एक प्रेस बयान में जनाब मैक्रों ने भारत और फ्रांस के दरमियान एक एडहॉक मीटिंग की अपील की है, ताकि एवियों में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस से पहले बैनुल अक्वामी एजेंडे पर कोई इत्तेफाक राय कायम हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अपने हममनसब तारिक रहमान को उनके खानदान के साथ भारत दौरे की दावत दी है। जनाब रहमान को लिखे गए खत में जनाब मोदी ने BNP रहनुमा के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर भारत और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती की जड़ें, मुश्तरका तारीख, सकाफती ताल्लुकात और अमन व खुशहाली के अवाम की ख्वाहिशात में पेवस्त हैं। जनाब रहमान को उनकी इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद देते हुए जनाब मोदी ने इस फतेह को बांग्लादेश के अवाम की जानिब से जनाब रहमान की क्यादत पर दिखाए गए भरोसे और एतमाद की अक्कासी करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि ये मैंडेट मुल्क को अमन व इस्तेकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करने के जनाब रहमान के विजन के तई अवामी हिमायत की नुमाइंदगी करता है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि वो कनेक्टिविटी, तिजारत, टेक्नोलॉजी, तालीम, हुनरमंदी के फरोग, तवानाई, सेहत देखभाल और सकाफत और अवाम से अवाम राबतों समेत वसीतर शोबों में ढाका के साथ इश्तराक बढ़ाने के मुंतजर हैं। इससे पहले जनाब तारिक रहमान ने बांग्लादेश के वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया, जो मुल्क में मोहम्मद यूनुस की क्यादत वाली उबूरी हुकूमत के तकरीबन 18 महीने की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद एक नए सियासी बाब का आगाज है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हलफ बर्दारी की तकरीब में भारत की नुमाइंदगी की। उनके हमरा खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, सीनियर सियासी रहनुमा और फौज के आला अहदेदार भी मौजूद थे। BNP ने रहमान की क्यादत में 2/3 की वाज अक्सरियत हासिल करते हुए इकतदार हासिल किया है। 12 फरवरी को हुए इंतखाब में BNP ने तकरीबन 50% वोट हासिल करते हुए 209 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इंतखाबी नतायज का ऐलान 13 फरवरी को किया गया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के साहिल पर आज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 में हिस्सा लेंगी। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ये इनेकाद भारत के सबसे बड़े बहरी इज्तिमात में से एक होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
सदर जमहूरिया मुसल्ला अफवाज की सुप्रीम कमांडर के तौर पर रिव्यू एंकरेज एरिया में मौजूद 70 जंगी बहरी जहाजों, आबदोजों और तकरीबन 50 हवाई जहाजों का मुआयना करेंगी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर और वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू सदर जमहूरिया के हमराह होंगे। इस तकरीब में 50 से ज्यादा मुल्कों के बहरी वफद हिस्सा ले रहे हैं, जिससे भारत की बढ़ती हुई बहरी शराकतदारी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया INS सुमेधा से रवाना होंगी, जिसे सदारती जेट के तौर पर नामजद किया गया है। मुल्क ही में तैयार किया गया भारत का पहला तैयारा बरदार जहांगीर जहाज INS विक्रांत बेड़े के बैनुल अक्वामी जायजे में तवज्जो का मरकूज रहेगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम और नीलगिरी समेत दीगर स्वदेशी प्लेटफॉर्म भी बहरिया के बिल्डर्स नेवी के विजन को नुमाया करेंगे। भारतीय बहरिया ने गुजश्ता रोज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की आखिरी रिहर्सल मुनाकिद की और इस तकरीब की पूरी तैयारियों को यकीनी बनाया। IFR 2026 मिलान मश्क और बहरे हिंद बहरी सिंपोजियम कॉन्क्लेव के साथ मुनाकिद हो रहा है, जो एक बड़ा बहरी इज्तिमा है। समंदरों के जरिए इत्तेहाद और दोस्ती को मजबूत करने के उन्वान के तहत मुनाकिद होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारत बहरुल काहिल खत्ते में बहरी तआवुन और सलामती को नुमाया किया जाएगा। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
आसाम में सियासी जमातों ने इंतखाबी कमीशन से दरखास्त की है कि वह आने वाले असेंबली इंतखाबात का इनेकाद एक या ज्यादा 2 मरहलों में कराए। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI की मुकम्मल बेंच ने कल आसाम के गुवाहाटी में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने गुवाहाटी में दीगर 2 इंतखाबी कमिश्नरों सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और सीनियर पुलिस और जिला इंतखाबी अफसरान से मुलाकात की। سیاسی جماعتوں نے انتخابی کمیشن سے درخواست کی کہ وہ انتخابی عمل کو آسام کے لوگوں کے اہم تہوار بیہو سے پہلے مکمل کر لیں۔ انتخابی کمیشن کی ٹیم کا 3 روزہ آسام دورہ آج اختتام پذیر ہوگا۔ گوہاٹی سے امین الحق جوادر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج مغربی بنگال کے 1 روزہ دورے پر رہیں گے۔ کولکاتہ میں اپنی آمد کے بعد جناب شاہ نوڈیا کے مایاپور میں اسکان صدر دفتر جائیں گے، جہاں سریلا بھکتی سدھانت سرسوتی ٹھاکر کی 152ویں جینتی منائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب شاہ جیا پتاکا سوامی مہاراج کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کریں گے اور مندر کے احاطے میں منعقد کیے جانے والے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے نیوکلیائی پروگرام پر امریکہ کے ساتھ تنازع کو حل کرنے کے لیے اہم رہنما اصولوں پر امریکہ کے ساتھ اس کی مفاہمت ہو گئی ہے۔ کل جنیوا میں دوسرے دور کی بات چیت کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں مزید کام کیے جانے کی ضرورت ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ سالس ملک عمان کے وزیر خارجہ بدر البسیدی نے کہا کہ یہ بات چیت کل اختتام پذیر ہوئی، جس میں مشترکہ مقاصد اور تکنیکی معاملات کی نشاندہی کی جانب پیش رفت ہوئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مشرق راجستھان میں گرج چمک اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔ دریاسنا دلی این سی آر میں آج صبح سویرے ہلکی بارش ہوئی۔ کرکٹ میں مردوں کے T20 عالمی کپ میں گروپ اے کے میچ میں آج شام احمد آباد میں بھارت کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل شام ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ سی کے ایک مقابلے میں نیپال نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جانب سے دیے گئے 171 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے نیپال نے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں 3 وکٹ کھو کر یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ نیپال کی جانب سے دیپیندر سنگھ ایری نے سب سے زیادہ رن بنائے۔ T20 عالمی کپ میں آج 2 اور مقابلے ہونے ہیں۔ گروپ ڈی میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ گروپ اے کے دوسرے مقابلے میں پاکستان کا سامنا نامیبیا سے ہوگا۔ کرکٹ میں اے سی سی خواتین ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت نے نیپال کو 7 وکٹ سے شکست دے کر شاندار جیت حاصل کی ہے اور سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے گروپ اے میں 3 میچوں میں اپنی دوسری جیت حاصل کی۔ بھارت 2 میچوں کی جیت اور 1 بار شکست کے ساتھ 4 پوائنٹس لے کر سر فہرست ہے۔ تنوجا کنور کو شاندار گیند بازی کرنے پر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیپال کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 18 اوورز میں محض 78 رن بنائے۔ بھارت نے 79 رن کا آسان نشانہ 7.5 اوورز میں ہی حاصل کر لیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے بھارت فرانس تعلقات سے متعلق خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت فرانس تعلقات میں نیا باب، اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے فرانس کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی کوئی حد نہیں ہے، بھارت ہر خطے میں امن کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ روزنامہ پرتاپ نے بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم کے حلف لینے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں طارق رحمان نے کمان سنبھالی، حلف برداری میں اوم برلا کی شرکت۔ اوم برلا نے طارق رحمان کو بھارت آنے کی دعوت دی۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 سے متعلق خبر کو شائع کیا ہے۔ اے آئی بھارت کو عالمی سطح پر علم کا سپر پاور بنانے میں انقلابی کردار ادا کرے گی۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ سے الگ کئی عالمی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے اپنے ہم منصب طارق رحمان کو بھارت آنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ قریبی تال میل سے کام کرنے کے منتظر ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج وشاکھاپٹنم میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 میں حصہ لیں گی۔ آسام میں سیاسی جماعتوں نے انتخابی کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات کا انعقاد 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 مرحلوں میں کرائے۔ اور کرکٹ میں مردوں کے T20 عالمی کپ میں گروپ اے کے میچ میں آج شام احمد آباد میں بھارت کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔